परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
मान बड़ाई आदर विष्ठा के समान दिखती है। उन महापुरुषों के वचन, उनकी व्याख्याएं बड़ी ओजस्वी तेजस्वी होती है। उन महात्माओं के वचन हृदय में बैठ जाते हैं और साधक के मन में भी साधन करने की अपने आप लालसा जग जाती है। जैसे वो मंत्र मुग्ध हुआ करता हो, उसके वचनों में बड़ी शक्ति रहती है। वचन बड़े हितकर होते हैं, हृदय में बैठ जाते हैं। वीर पुरुषों की गर्जना से कायर भी जूझने लग जाते हैं। शास्त्रों में आता है कि सूखे लकड़े को भी सुनाया जाए तो वो भी द्रवित हो जाता है, इतना महात्माओं का प्रभाव है। कायर पुरुष भी साधन करने लगता है। उसको अपना हित और कल्याण दिखाई देता है, इसलिए सब लोग सुनकर साधन में लग जाते हैं। तो जैसे वीर पुरुष के वचनों में ताकत होती है, ऐसे महात्माओं के वचनों में भी भोगी लोग भी साधन करने लगते हैं, ऐसी ताकत होती है। उनकी ऐसी घोषणा होती है जैसे अर्जुन और भीष्म की गर्जना होती है, पर ऐसे पुरुष होते ही बहुत कम है। हम लोगों के बुरे आचरण, पाप महात्माओं के दर्शन से, भाषण से भाग जाया करते हैं। जैसे अंधकार प्रकाश से भाग जाता है, उसी तरह हमारा अज्ञान भी भाग जाता है। अच्छे भाव पैदा होते हैं। संसार में जितने महापुरुष हैं, वे सभी परमात्मा में सुख बतलाते हैं। महात्मा तो बतलाते ही हैं, साधारण आदमी साधन में लगता है उसको भी शांति मिलती है, आनंद मिलता है। सच्चे महात्मा होते हैं, उनको सभी आदर पूर्वक सिर झुकाते हैं। राजा को तो हम लोग डर के मारे सिर झुकाते हैं। हम लोगों को महात्मा की चाल में चलना चाहिए। देखो, मन में पूरा वैराग्य रखना चाहिए। दाल रोटी खाई तो क्या, मिठाई खाई तो क्या, शरीर का काम तो सभी से चल जाता है। महलों में सोने से क्या और झोपड़ी में सोए तो क्या, चादर ओढ़ ली तो क्या, बहुत बढ़िया रेशमी कंबल ओढ़ ली तो क्या, नींद में क्या फर्क पड़ता है। ऐसे महापुरुष, विरक्त महापुरुष की दृष्टि में कुत्ता और राजा दोनों बराबर है। लाखों रुपए उनके चरणों में ठुकराते फिरते हैं, उनके आनंद का शांति का कोई ठिकाना नहीं है। उन महात्माओं को देखकर हमको सीखना चाहिए कि संसार के पदार्थों से आसक्ति हटावे और भगवान की ओर लगे। जो लग जाते हैं आनंद को प्राप्त होते हैं। तुम्हारे जो प्रेमी लोग हैं ये केवल मरने के समय तक साथ देंगे, ज्यादा से ज्यादा साथ देंगे तो मर घट तक चले जाएंगे, जलाने के लिए चले जाएंगे। उनमें भी कई तो आएंगे भी नहीं, कोई थोड़े से आंसू बहा करके चुप हो जाएंगे, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तू इनको देख करके क्यों भूला हुआ है? सच्ची बात यह है, साथ देने वाले दो हैं, एक ईश्वर और एक ईश्वर की भक्ति या सदाचार कह दो। धर्म कहता है कि हे मनुष्यों, मैंने किसी का भी त्याग नहीं किया है, आप लोग ही मेरा त्याग करते हैं। महात्मा भी यही कहते हैं और भगवान भी यही कहते हैं, हमने किसी का त्याग नहीं किया, सब हमारा त्याग करते हैं। सोचो सज्जनों, अपनी उन्नति किस बात में है? यही यही के आराम, भोग, पदार्थ, परिवार, व्यापार, इसमें रहे, इसको उन्नति नहीं माननी चाहिए। आगे जाकर बहुत बुरी दशा होगी, पशु बनना पड़ेगा, पक्षी बनना पड़ेगा, वृक्ष बनना पड़ेगा। लाखों बार वहां चक्कर काट कर आए हो, अभी भी यदि नहीं चेतते हैं तो फिर कहां कब चेता जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवत प्राप्ति के अलावा पूर्ण अंधकार है। चेत करो, अपने सुख और आराम को मिट्टी में मिला दो। परमात्मा की प्राप्ति के बाद और लोगों के कल्याण में जीवन बिताओ। तुम्हारे जीवन से लोगों का जीवन धन्य हो जाए, इससे बढ़कर और क्या जीवन में कमाई कर सकते हो? इस आराम में समय लगाओगे तो मिलने वाला इस आराम कुत्तों गधों को भी मिलता है, वे भी भोग भोगते हुए मरते हैं, ऐसे ही अपने लोग मर जाएंगे, क्या लाभ हुआ? ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो लोग विद्या तपस्या दान ज्ञान शील अच्छे आचार विचार सद्गुण धर्म इनमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, वो पृथ्वी के ऊपर एक भार लिए हुए फिरते हैं। यह केवल एक कहने के लिए मनुष्य है, मनुष्य की खोली के अंदर छिपे हुए पशु है। इससे तो हम वृक्ष होते तो बड़ा अच्छा होता, कोई हमारी छाया में तो बैठता, और तो और कोई लकड़ी काटकर बेचारे जलाते, कुछ काम में तो लेते। इस मनुष्य शरीर के खोले को हम खराब कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, विषयों में जीवन व्यतीत करते हैं। इससे तो पशु ही अच्छे। हमें जो विषयों में सुख मिलता है वैसा का वैसा सुख कुत्ते को मिलता है। स्वाद शौकीनी में, भोगों में, इन सब में समय बिताकर अपना अपमान नहीं करना चाहिए। इन सब को तिलांजलि देओ और अंदर से वैराग्य की भावना जागृत होनी चाहिए। वैराग्य के बिना परमात्मा के ध्यान की जो मस्ती है वो कैसे मिलेगी। आप वैराग्य के मार्ग से चलो, उस वैराग्य के मार्ग में परमात्मा स्वतः मिल जाएंगे। वास्तव में उसी का जीवन धन्य है। संसार के काम धंधे ये गौण वृत्ति के हैं, मान मुख्य नहीं है। मुख्य काम भजन साधन करने का है। यदि कहो कि हमको तो गृहस्थ के बहुत से काम करने पड़ते हैं तो उन काम को सुलटाओ और अंदर से ये बात रखो कि हमारा मुख्य काम भजन का है। साधु है वो भिक्षा मांगने के सिवाय दूसरा अपने अंदर कोई मेरे काम है ऐसा भाव रखे ही नहीं। क्या कर्म है? ऐसे ही गृहस्थ भी कोई काम काज आप पड़े आफत समझ के करो, अथवा गृहस्थ के बहुत से और भी कई झंझट के काम है तो उन कामों को अपना कोई फोड़े की सेवा होती है वैसे काम करके सलटाओ। जैसे हमारे फोड़ा हो गया, अब उसमें पट्टी बांधनी है तो उसमें राग द्वेष नहीं करते, अरे बाबा आफत है कर दो एक बार बने बैद जी पट्टी बांध दो, आफत समझ के करते हैं। ऐसे आफत समझ करके काम सलटाओ, भगवान के भजन में लगो। मुख्य काम भगवान का भजन है, सत्संग है और ध्यान है। हमारा सत्संग से तात्पर्य है कि कहना और सुनना, ये दोनों ही सत्संग है। अब कोई हमसे पूछे कि भजन ध्यान और सत्संग तीनों में भी आपको सबसे बढ़िया एक नंबर का क्या लगता है, तो हमको एक नंबर की बात सत्संग लगती है। और यदि कोई दूसरा आदमी भजन ध्यान को भी मुख्य मानता है तो मानो कोई हमें ऐतराज नहीं है। भजन ध्यान में किसी काम में बाधा पड़े, झंझट आए तो उसको तत्काल दूर करो। जैसे आदमी के स्वार्थ में कोई बाधा पड़ती है तो उससे वो झुंझला जाता है, ऐसे भजन ध्यान में बाधा पड़े तो झुंझला करके उसको छोड़ करके बाधा को दूर करो। आपके जीवन में यूं बहुत से झंझट हैं तो अब भजन ध्यान में जो बाधा पड़े वो कम झंझट है क्या? सच्ची बात तो यह है कि भजन ध्यान में हमारी रुचि नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा झंझट है। ये कथा कहने वाले लोग स्वयं वैसा आचरण करते हैं और वैसा ही कहते हैं तब तो यह एक नंबर की बात। लोगों के सामने तो बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं और आचरण में नहीं लाते हैं तो अपने को इधर उनकी बात देखनी नहीं है। बांसने वाले ने बांस दिया, अपने सुन लो। वो क्या करता है क्या नहीं करता है इसको छोड़ो। कई कथा सुनाने वाला नहीं मिले तो कहीं चुपचाप स्वयं पढ़ लो, पर लग जाओ, इस काम को छोड़ो मत। कि कथा सुनने से लाभ है या नाम जप करने से लाभ है? तो भाई देखो, कोई हमसे पूछे कि अन्न खाने में लाभ है कि जल पीने में लाभ है, तो हम तो कहेंगे कि अन्न की जगह अन्न है और जल की जगह जल है। ऐसे ही भगवान का चरित्र सुनना और चरित्र सुनकर के भगवान की महिमा में डूब करके भगवान का नाम जपना, ये दोनों एक दूसरे की सहायता करने वाले होते हैं। जैसे जल पीने से अन्न पचता है और अन्न खाने से प्यास बढ़ती है, एक दूसरे के सहायक हैं। ऐसे ही सत्संग करना, नाम जप करना एक दूसरे के सहायक होते हैं। जैसे एक वृक्ष को, पौधे को सींचा जाता है, ऐसे अपने अंदर सत्संग रूपी एक पौधा है, इसको बढ़िया खाद दो, इसकी बाड़ लगाओ, इस पौधे को सींचो। भजन ध्यान है, ये जड़ है, ये पानी है, सत्संग एक पौधा है और वैराग्य है वो इसके कांटे की बाड़ है। ऐसे सत्संग को, सत्संग पौधे को बचाओ और पुष्ट करो। जिसका आप नाम लेते हो उसका ध्यान होना चाहिए। जैसे आप राम राम करते हो तो राम है, राम का या विष्णु का या कृष्ण का ध्यान करो। ध्यान सहित लिया हुआ नाम बहुत लाभ करने वाला होता है। आप एक ही बात कहोगे कि मन नहीं लगता है, आपके मन लगने की बात नहीं, आपके ध्यान करने और जप करने की लालसा रहनी चाहिए। क्या नाम जप करते करते ध्यान अनायास हो जाएगा? उत्तर देते हैं, यदि ध्यान करने का उद्देश्य होगा, लक्ष्य रखोगे कि भाई नाम करते करते मुझे ध्यान करना है, तब तो आपका ध्यान लग जाएगा। हम तो हमारी बात कहते हैं, वैसे लोगों में निराकार का ध्यान थोड़ा कठिन है, सगुण का ध्यान सुगम पड़ता है, क्योंकि सगुण रूप में भगवान के चरण है, भगवान के वक्षस्थल है, भगवान के भुजा है, भगवान का मुख है, भगवान का सिर है, ध्यान करने में सुगम पड़ता है। निराकार का ध्यान कठिन पड़ता है, लेकिन हमको तो निर्गुण निराकार का ध्यान बिल्कुल कठिन मालूम नहीं देता। ये समझना चाहिए कि परमात्मा की कृपा हो तो एक मिनट में, एक क्षण में ध्यान हो जाए, परंतु यदि नहीं होता है तो भगवान की कृपा का अभाव नहीं है, हमारी रुचि में कमी है। हम ध्यान करने की एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं। निश्चय रखो, बहुत बढ़िया बात है, बाहर भीतर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह एक आनंद ही आनंद है। ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप आनंद ही आनंद है। आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। आनंद के सिवा यहां कुछ नहीं है। उस आनंद के संकल्प में ही सब विराजमान है। ये संसार भी भगवान का आनंदमय संकल्प है। भगवान आनंदमय, संकल्प आनंदमय, संसार भी आनंदमय। आनंदमय भगवान से पैदा होने वाला ये संसार आनंद को छोड़कर थोड़े ही हो सकता है। वाणी के द्वारा भगवान का जप करें, मन के द्वारा मनन करें, फिर देखो सब आनंदी आनंद है, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, अड़ंग बड़ंग स्वाहा। जो कुछ है वो सब वस्तुओं को भीतर से त्याग दे, अपने पास कुछ नहीं है। अपने मन से संसार का सब संबंध तोड़ करके बैठे, फिर बसता है वो परमात्मा है। जैसे बिजली से कितना काम होता है, कितने यंत्र चलते हैं, उसी तरह ब्रह्म की सत्ता से सब काम होता है। जिसकी सत्ता से सारे काम होते हैं वो ब्रह्म है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। मनुष्य को दुख क्यों होता है कि वो ब्रह्म की जगह प्रकृति को देखता है, संसार भगवान की जगह संसार को देखता है, आनंदमय की जगह दुखमय देखता है, इसलिए उसको कष्ट उठाना पड़ता है। ये जो संसार में हमारी आसक्ति होती है, यही जन्म मरण का मूल कारण है। हमारा वास्तव में तत्वतः प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। आप देखो, शरीर आपका नाशवान है, क्षणभंगुर है, अनित्य है। इस बात को आप यदि अच्छी तरह से जान जाएं, तो आप सर्वथा मुक्त हो सकते हैं। जितने दुख हैं वे सब पाप से पैदा होते हैं, और पाप सुख की इच्छा से पैदा होते हैं। वर्तमान में मुझे सुख मिले, बस इस कारण से पाप का जन्म होता है। आप सोचिए, किसान थोड़ा सा अन्न लेकर धूल में मिला देता है, उसके बाद उसको कितना अन्न मिलता है। ऐसे ही आप वर्तमान में जो सुख मिलता है उसको धूल में मिला दो, तो परिणाम में आपको नित्य सुख मिलेगा। ये जो वर्तमान सुख की इच्छा है, बस यही सबसे बड़ी दुख की बात है, दुख का कारण है। दुख की यदि जड़ काटनी हो तो सांसारिक सुख की इच्छा का त्याग करो। वर्तमान में सुख भोगना चाहते हैं तो कभी भी आपको परमात्मा का आनंद नहीं मिलेगा। संसार के विषयों में सुख बुद्धि कर रहे हैं, यही पाप के बीज को बोना है। सुख मूर्खता से ही पैदा होता है। जैसे मरुभूमि में जल नहीं है, ये बात वहां रहने वाले जानते हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए। नहीं मानोगे और मरुभूमि में कोई नौका लेकर चला जाएगा तो पछताएगा। ऐसे ही संसार ये मरुभूमि है, यहां सुख है ही नहीं, ये बात संतों से मान लो तो ठीक है, नहीं मानोगे तो दुख पैदा होगा। भगवान की भक्ति करने से आसक्ति, अहंकार, राग, द्वेष आदि का नाश होता है। काम, क्रोध आदि क्लेशों का नाश होता है, सबका नाश होता है। भगवान की जो भक्ति है ना, उसमें लगेंगे तो स्वतः ही आसक्ति का, अहंकार का, राग द्वेष का नाश होगा। यदि ये हल्के होते हैं, काम क्रोध आदि कम होते हैं, तो समझना चाहिए हम भगवान के निकट पहुंच रहे हैं, हमारा काम ठीक चल रहा है। और यदि काम क्रोध आदि हमारे नष्ट नहीं होते हैं तो हम धोखा खा रहे हैं। यह एक हमारे जीवन का सबसे बड़ा परीक्षण का समय होता है। जितने देवी संपदाएं बढ़ती है उतना हमारा काम बनता जा रहा है। हम सोचते हैं कि पहले देवी संपदा कमावे, पहले मन आदि को ठीक करें, फिर हम भक्ति करेंगे, तो ये रास्ता ठीक नहीं है। आप पहले भक्ति में लग जाओ, उसके बाद ये सब मन बुद्धि आदि ठीक हो जाएंगे। स्वार्थ का त्याग करके रहो। स्वार्थ और आसक्ति ये आपके अंदर जन्म जन्मांतर से भरी पड़ी है, जो दुख दे रही है, इसका त्याग करो। ज्ञान मार्ग में चलते हो तो संसार को सपना समझो। जगने के बाद जैसे सपना झूठा साबित होता है, ऐसे ही माया का त्याग करने के बाद ये संसार भी झूठा ही रहेगा। ये राग द्वेष है, इस राग द्वेष के ऊपर छुरी चलाओ, चाहे ज्ञान योग से, चाहे भक्ति योग से, चाहे कर्म योग से। तीनों को जड़ से, तीनों में से किसी भी उपाय से इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। जैसे कोई टीबी का बीमार है, उसका कोई इलाज हो रहा है और उसके शरीर का वजन बढ़ रहा है, तो ठीक है, चाहे कोई दवाई हो। अरे दवाई का परिणाम तो यही है ना कि उसके शरीर का वजन बढ़ रहा है। इसी प्रकार से चाहे ज्ञान योग का सहारा लो, चाहे भक्ति योग का सहारा लो, किसी का भी सहारा लो, हमको परिणाम में यही देखना है कि हमारे राग द्वेष का रूप कट रहा है कि नहीं, समता की वृद्धि हो रही है कि नहीं। सज्जनों, मनुष्य का समय बहुत कीमती है। मनुष्य का समय उत्तरोत्तर बीत रहा है, वो उत्तम काम में बीत रहा है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखो। लोग फैक्ट्री का काम देखते हैं, व्यापार का काम देखते हैं, कहां कहां की कितनी गहरी गहरी खबरें रखते हैं। व्यापार में ये होगा, आगे होगा, आगे का वादा करते हैं, वादा सौदा करते हैं, बड़े सावधान है। परंतु इधर काम चलना चाहिए, इधर का काम चलना चाहिए, तेजी के साथ चलना चाहिए, भगवान की तरफ इधर ध्यान ही नहीं है। ये व्यापार फैक्ट्रियां तो आपकी यूं ही चलती रहेगी, ये काम तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, कब करोगे? आप अभी मर जाओगे तो फैक्ट्री का काम तो बच्चे लोग संभाल लेंगे, लड़के लोग, परंतु आपके द्वारा भजन नहीं होगा तो वो काम कौन संभालेगा? कलयुग में थोड़ी सी छूट दी गई है, परंतु भले आदमी छूट का लाभ नहीं लेते। जैसे कोई सेठ है, वो सदावर्त से अन्न बांटता है, तो दूसरा सेठ वहां जाकर सदावर्त का अन्न नहीं खाता कि भाई हम सदावर्त का अन्न कैसे खाएं। ऐसे ही कलयुग में यदि कोई छूट दी भी हो, अपने को छूट की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपने को तो भगवान के भजन में लगना चाहिए। कोई कहते हैं अंतकाल में भजन कर लेंगे, तो उसका भी भरोसा मत करो, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा छिपी हुई चीज अपनी मृत्यु है, जाने कब आ जाए। पहले ही काम बनाओ, समय अब बहुत कम रह गया है, जिंदगी बहुत सी निकल गई है, जितना जिए हैं उतना जिएंगे कि नहीं पता नहीं है। अब तो भाई सबसे जी हटा करके एक भगवान में लगना चाहिए। जैसे किसी पहाड़ पर, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात, किसी पहाड़ पर लोहा, तांबा, सोना और हीरे की खाने हैं एक ही पहाड़ में, तो समझदार आदमी लोहा तांबा की तरफ नहीं जाएगा, वो सोना की तरफ भी नहीं जाएगा, वो हीरे की खान में ही लगेगा। ऐसे ही आपके जीवन में कितने ही काम धंधे हैं, वो सब लोहा तांबा की खाने हैं, और भगवान का भजन है ये हीरे का खानी, हीरे के खान का काम है। इस हीरे की खान को संभालना चाहिए, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करो, प्रभु का स्मरण करो, एकांत में बैठो, अपने मन से आप एकांत में रहो, परिवार में रहते हुए भी अंतर्मुखी रहो, वाणी का उपयोग कम से कम करो, नाम जप करो वाणी से, हृदय से भगवान का चिंतन करो, ये आपकी सच्ची कमाई है। कीर्तन होता हो तो कीर्तन सुनो, कीर्तन करो, ज्यादा पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा व्याख्यान होता है उस समय में नाम का जप कर भी कर लो और व्याख्यान भी सुन लो, ये दो बात नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा जहां सगुण भगवान का निरूपण होता है वहां नाम जप कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सत्संग में बैठे बैठे माला फेरते हैं, वो देखते दोनों काम हो जाएगा, सत्संग भी सुन लेंगे और माला भी हो जाएगी। कहते नहीं होता, दुविधा में दोनों गई माया मिली न रहा। उनसे पूछ लेना आपकी सत्संग में आज क्या बात हुई, बता नहीं सकते वो। अच्छा व्याख्यान होता है वहां पर मन को व्याख्यान की तरफ लगा है, ये बहुत बड़ा काम है। माला पूरी करना ये बड़ी बात नहीं है, अलग समय में करो, अलग समय में बैठ करके श्वास के द्वारा ऐसे उतार चढ़ाव से भगवान के नाम का स्मरण करो और उसके अंदर आप स्वरूप का चिंतन करना चालू करो, इससे बड़ा लाभ होगा। राम।